सभी सुनने वाले बहनों और भाइयों को शिवपाल चौहान का प्यार भरा नमस्कार। प्यारे साथियों, टी सीरीज के माध्यम से मैं अपना ये हास्य से लबालब कैसेट आप तक पहुंचा रहा हूं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। प्यारे साथियों, एक बार मैं अपने घर पर बैठा था कि हमारे एक मित्र हमारे घर पहुंचे। उन्होंने कहा,
अरे शिवपाल, क्यों, क्या हुआ?
बोला, क्यों क्या होगा?
अकेला बैठा?
अकेला नहीं तो किसके साथ बैठूं?
क्यों, भाभी नहीं है क्या?
बोला, शादी नहीं किया तो भाभी कहां से आएंगी?
शादी नहीं किया,
कोई लड़की देता ही नहीं। दो जगह लड़की देखने गया था तो दोनों जगह शादी नहीं जमी। एक जगह गया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, दरवाजे खोलकर लड़की का बाप बाहर निकला। लड़की के बाप ने बाहर निकलते से पूछा, क्यों भैया, काय के दिया आए? देखिए बाबूजी, मैं शादी की बात करने के लिए आया हूँ।
शादी की बात? किसकी शादी की बात?
मैं तुम्हारी लड़की देखने के लिए आया हूँ।
लड़की? लड़का कहाँ है?
मैंने कहा, बाबूजी, लड़का तो मैं ही हूँ।
तुम लड़के हो? अरे क्या मजाक बात करते हो, अरे शकल से तो तुम तीन बच्चों के बाप लगते हो।
नहीं बाबूजी, लड़का मैं ही हूँ।
अरे तुमको लड़की देने से तो अच्छा है कि लड़की को कुएं में धक्का दे देना, लेकिन तुमसे लड़की हम देंगे नहीं, शादी नहीं करेंगे।
मैंने कहा, बाबूजी, कब आप लड़की को धक्का दे रहे कुएं में?
क्यों, तुमको क्या करना, हम धक्का दे नहीं दे तुम कौन होते बोलने वाले?
नहीं बाबूजी, तुम धक्का दोगे तो मैं लड़की को कुएं में से निकाल लूंगा, क्योंकि मैं तैराकी में चैंपियन रह चुका हूँ। पहली जगह शादी नहीं जमी, दूसरी जगह लड़की देखने गया। इस बार मैं अपने चाचा जी को अपने साथ ले गया। मेरे चाचा जी ने मुझे कार में बिठाया, लड़की वालों के घर पहुँचाया। लड़की वालों के घर पहुँचे, लड़की वालों ने लड़की दिखाई, लड़की को मैं पसंद आ गया, मुझे भी लड़की पसंद आ गई। सारी बातें तय हो गई, लड़की के पिताजी ने भी मुझे पसंद कर लिया, सब लोगों ने पसंद कर लिया। पसंद करने के बाद हमारी होने वाली सास बोली, सबने लड़की देख ली है तो मैं भी लड़की देख लेती हूँ। जैसी लड़की की माँ ने हमारा मुंह देखा, एकदम से बेहोश हो गई। जैसी बेहोश हुई, अंदर ले गए, पानी के चार पांच छींटे मारे। सास होने वाली जो थी उठकर बैठी, उसने कहा, ये लड़का है, ये लड़का है। अरे ये तो लड़का ऐसा सेकंड हैंड है, आज से 20 साल पहले ये लड़का मुझे अपनी शादी के लिए देखने आया था, इसकी अभी तक शादी नहीं हुई। लड़की आई, लड़की ने पूछा, सुनो जी, जो तुम्हारे साथ आए हैं वो कौन है? मैंने कहा, वो मेरे चाचा हैं, उनसे तुमको क्या काम है? तुम्हारे चाचा हैं, वो करते क्या हैं? मैंने कहा, उनका बहुत बड़ा कारोबार है, जिस कार में हम बैठकर आए हैं वो कार भी उन्हीं की है। वो लखपति हैं, करोड़पति हैं। हमारी होने वाली पत्नी ने कहा, क्या कहा, वो लखपति हैं? तो ऐसा सुनो मेरा फैसला कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं करूँगी तो तुम्हारे चाचा जी से शादी करूँगी। मैंने कहा, देख, मैं तुझे अपने घरवाली बनाने आया हूँ, मैं तुझे अपनी चाची नहीं बना सकता। उस दिन से मैंने निर्णय ले लिया कि अब शादी करूँगा तो किसी सेकंड हैंड यानी कि विधवा से। मेरा दोस्त बोला,
अबे पगले, तू शादी तो कर, विधवा हम भाभी को बना देंगे।
कुछ दिनों के बाद फिर से एक जगह लड़की देखने का निमंत्रण मिला। लड़की देखने के लिए जब हम पहुँचे तो मेरे एक दोस्त ने कहा,
देख शिवपाल, ये आखिरी मौका है, इसके बाद तुझे मौका मिलने वाला नहीं, इस बार तू घर बसा लेना, शादी कर लेना।
लड़की वालों के घर गए, लड़की एकदम गारंटेड कलर की थी, इतनी काली एकदम कोयला। इतना गारंटेड कलर, मेरा दोस्त बोला।
शिवपाल, क्या मैचिंग कलर है? वो काली, तू भी काला, दोनों महाकाली।
मैंने लड़की के पिताजी से कहा, बाबूजी तुम्हारे यहाँ दूसरा पीस नहीं है क्या? लड़की के बाप पिताजी बोले, देख बेटा, ये हमारा आखिरी कट पीस है, इसके बाद इसके लिए भी वेटिंग लिस्ट लगी हुई है, हाँ बोलो जल्दी से वरना दूसरे को अंदर आने दो। बड़े मुश्किल से शादी तय हुई। लड़की के पिताजी ने कहा, देख बेटा तू इसके कलर पे मत जा, कलर यद्यपि काला है लेकिन काले कलर के भी बहुत सारे फायदे हैं, ये तेरे साथ रहेंगी तो माल की गारंटी रहेंगी, कहीं कोई खतरा नहीं, कहीं कोई रिस्क नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा नहीं, जहाँ पर भी पूरे इंडिया में घूमने जाएंगी सही सलामत वापस घर पर आ जाएंगी। एक बार की बात है बेटा, मेरी लड़की रात को 9 से 12 फिल्म देखने गई थी, जब वापस आ रही थी तो इसके पीछे 4 गुंडे लग गए। कुछ दूरी तक आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद जब उन गुंडों ने मेरी काली लड़की का मुंह देखा तो गुंडे कहने लगे, बहन जी माफ़ करिए, अगर आप कहो तो हम तुमको घर तक छोड़ देते हैं। ये फायदे काले कलर होने के हैं, कहीं कोई नुकसान होने का डर नहीं रहता। शादी की बात तय हो गई, 31 फरवरी शादी निकली। शादी का दिन आज भी मुझे फांसी के दिन की तरह याद है। 4-5 लोगों ने पकड़कर जबरदस्ती हल्दी लगाए। हल्दी लगाने के बाद मुझे दूल्हा बनाया गया। दूल्हा बनाने के बाद मुझे घोड़े पर बिठाया गया। घोड़ा भी ऐसा मारखुंडा घोड़ा था, क्या बताऊँ। आधे घंटा हो गया बैठे बैठे घोड़े पर, बाजे वाले नहीं आए। मैंने अपने एक मित्र से कहा,
अबे छोटिया, अबे बाजे वाले को तो लेकर आओ रे।
जबरदस्ती दौड़ कर गया, बाजे वालों को लेकर आया। बाजे वाले आते से ही उन्होंने चालू कर दिया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। मैंने कहा,
क्यों रे, दूसरा गाना बजाना नहीं आता क्या तुमको?
बाजे वाले बोलने लगे, बाबूजी हमारी क्या गलती है, हम तो मैयत स्पेशलिस्ट है, हम तो बस इसके सिवा दूसरा गाना जानते ही नहीं। मैंने कहा, चलो वापस जाओ। इतने में मेरे मोहल्ले का एक बदमाश लड़का, इतना डामर लड़का आया और कहने लगा,
शिवपाल चाचा, शिवपाल चाचा।
बोला, क्यों क्या हो गया?
शिवपाल चाचा, फोड़ू क्या बम?
मैं बोला, फोड़ ले बेटा, जैसे सब लोग घोड़े के आगे सामने फोड़ रहे हैं वैसे तू भी बम फोड़ ले। कहने लगा,
नहीं शिवपाल चाचा, मैं घोड़े के आगे बम नहीं फोड़ूंगा।
मैंने कहा, घोड़े के आगे नहीं फोड़ेगा तो पीछे फोड़ ले बेटा।
नहीं शिवपाल चाचा, मैं पीछे भी नहीं फोड़ूंगा, मैं आगे भी नहीं फोड़ूंगा।
फिर कहाँ फोड़ेगा?
मैं तो घोड़े के नीचे बम फोड़ूंगा।
देख बेटा, ऐसी जिद मत कर। कई बारातियों ने समझाया लेकिन लड़का डांबर था, नहीं माना, घोड़े के नीचे बम फोड़ दिया। घोड़ा बड़ा स्वामी भक्त था, मुझे सीधा लेकर लड़की वालों के मंडप के सामने पहुंचा। घोड़ा आगे, बाराती पीछे पीछे दौड़ रहे। जैसे ही घोड़े पर मैं मंडप के सामने पहुंचा तो 2 महिलाएं आपस में बात करने लगी। एक ने कहा,
क्या रे, मैं तो दूल्हे को एकदम ढीला ढाला समझ रही थी, लेकिन देख घोड़े को भगा के लाया।
मैं मन ही मन बोला, उसको क्या मालूम, मैं घोड़े को भगा के नहीं लाया, घोड़ा मेरे को भगा के लाया है। घोड़े पर मुझे बैठा देखकर एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहने लगा,
मम्मी मम्मी। बोलो बेटी।
मम्मी मम्मी, एक बात बताओ।
पूछो बेटी।
के दूल्हा घोड़े पर क्यों बैठता है, गधे पर क्यों नहीं बैठता मम्मी?
देख बेटा, दूल्हा घोड़े पर इसलिए बैठता है, गधे पर इसलिए नहीं बैठता क्योंकि दुल्हन है ना, एक साथ 2 गधों को नहीं देख सकती।
आधे घंटे बाद एक दूसरी महिला बोली,
ए दूल्हे को देख,
उसका दायां हाथ तो हिल ही नहीं रहा जब से मैं देख रही हूँ, वैसा का वैसा रखा हुआ है।
मैंने बोला, देख भाई, दाया नहीं हिल रहा तो क्या हुआ, बायां हाथ तो हिल रहा है ना, अच्छे से घूर घूर के देख ले। जैसे तैसे शादी हुई। शादी होने के बाद जब विदाई का समय आया तो विदाई के समय एक बुढ़िया ने कहा,
बेटा मेरे को तो बड़ा मुश्किल लगता कि दूल्हा घर तक पहुँचेगा, देख तो सही कैसा काला चश्मा लगा के आ रहा है।
लड़की विदा हो रही थी, सब लोग रो रहे थे। थोड़ी देर बाद हमारी पत्नी ने कहा,
सुनो।
क्या है?
जरा पैर को मोड़ लो।
चुपचाप बैठी रह, पैर को मोड़ लो।
हमने भी पूरा डांट कर कहा, फालतू बात मत करो।
सुनो, तुम्हारा पैर है ना, हिल नहीं रहा।
क्या लगा के रखी, पैर हिल नहीं रहा? कुछ देर पहले वो महिला बोल रही थी हाथ नहीं हिलता, अब तू लगा के रखी पैर नहीं हिलता? अरे जिसको हिलना वो हिल रहा है ना, बस बात खत्म। बात आगे बढ़ी। मैं अपने घर वाली को लेकर घर पर पहुंचा। सुहाग रात की बात, अंधेरा किया कमरे में। रात के 12 बजे मैंने अपने घर वाली से कहा, देख कोमल, आज तेरे मन में जो भी है सच सच कह दे, बिल्कुल मैं भी अपने मन की बात को छिपाऊंगा नहीं, तू भी अपने मन की बात को छिपाना नहीं, दोनों में से जो भी अपने मन की बात छिपाएगा, जो भी सच नहीं कहेगा, वो यहीं पर जलकर भस्म हो जाएगा। पत्नी भी होशियार थी, पत्नी ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ा और कहा,
स्वामी मैं कसम खाती हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी।
मैंने बात आगे बढ़ाई। मैंने कहा, प्रिय तुम्हारे ये लंबे बाल, आहा, ऐसे लंबे बाल तो मीना कुमारी के बाद सिर्फ तुम्हारे ही हैं, ये लंबे लंबे काले काले बाल। पत्नी ने कहा,
सुनो स्वामी।
मैंने कहा, आज मत रोक, आज सुहाग रात की बात है, आज मुझे इन बालों की तारीफ करने दो। पत्नी ने कहा,
नहीं स्वामी नहीं, मेरे बालों की ज्यादा तारीफ मत करो।
चुप रह, मुझे अब तेरे बालों की तारीफ करने दे।
नहीं स्वामी, बालों की तारीफ मत करो।
करने दे बालों की तारीफ, ऐसे घने काले लंबे बाल।
नहीं स्वामी, मुझे ज्यादा सहन नहीं हो रहा।
क्यों सहन नहीं हो रहा?
दरअसल मैं तो एकदम से टकली हूँ, मेरे सिर में तो एक भी बाल नहीं है, तो मैं तो नकली बाल का वीक उतार, ये लो उतार के ये लो, मैं तो मेरे सिर में तो एक भी बाल नहीं है।
बाल नहीं तो क्या हुआ, टकली है तो क्या हुआ, वैसे भी सुहाग रात में बाल का क्या काम, एडजस्ट कर लेंगे। हमने बात आगे बढ़ाई। प्रिय तुम्हारे दांत, आहा, क्या दांत है, ऐसे मोती सुंदर सुंदर दांत बहुत कम देखने में आते हैं। पत्नी ने कहा,
नहीं स्वामी।
नहीं क्या, मुझे तारीफ करने दो।
नहीं स्वामी, दांतों की तारीफ मत करो।
क्यों, दांतों की तारीफ क्यों नहीं करूं?
दरअसल मेरे ये नकली दांत हैं, मैं तो अपने पड़ोसन से शादी के लिए लेकर आई थी, दांतों का सेट भी नकली है, मैं तो बम बम बुजी बम बम बम।
कोई बात नहीं, मैंने कहा, दांत नकली है तो क्या हुआ, शादी में वैसे भी सुहागरात के समय दांतों का क्या काम, एडजस्ट कर लेंगे। अब पत्नी ने पूछा,
स्वामी।
मैंने कहा, बोल प्रिय।
स्वामी एक बात बताओ, मैं जब से तुमको आधे घंटे से देख रही हूँ, तुम काला चश्मा लगा के रखे हो, इसे उतारते क्यों नहीं?
ये ले, तू कहती है तो मैं उतार ही देता हूँ। दरअसल बात ये है प्रिय कि मेरी एक आंख है ही नहीं, एक आंख नकली है, ये ले। पत्नी ने कहा,
एक आंख नकली है तो क्या हुआ, वैसे भी सुहाग रात में आँख का क्या काम, एडजस्ट कर लूंगी।
बात आगे बढ़ाई हमारी पत्नी ने। मैंने कहा, देख प्रिय, ये जिस हाथ को तुम आधे घंटे से अपने हाथ में थामी हो, दरअसल वो मेरा एक हाथ नकली है। पत्नी ने कहा,
क्या कहा, हाथ नकली है? देखो स्वामी, तुमको कसम है, हाथ नकली है, मैं एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन इसके आगे मैं एडजस्ट नहीं करूंगी।
शादी के कुछ महीनों के बाद एक दिन हमारी पत्नी बोली,
सुनो।
क्या हुआ?
सुनो, जब तुम ऑफिस चले जाते हो ना।
क्या होता है, कौन आता ऑफिस के जाने के बाद?
नहीं, मैं तुमसे कह रही हूँ, खिड़की पे पर्दे टंगा दो, दरवाजे पर पर्दे टंगा दो।
क्यों, क्यों पर्दे टंगा दूं?
दरअसल होता क्या है, तुम्हारे जाने के बाद आजू बाजू के लड़के है ना, खिड़कियों से दरवाजे से झांकते हैं।
ऐसा झांकते हैं? अरे खिड़की पे पर्दे टंगा दो, दरवाजे पे पर्दे टंगा दो, क्या लगा के रखी? एक बार सबको, पूरे मोहल्ले वालों को अपना मुंह दिखा दे, सब लोग अपने अपने घरों पे खुद ही पर्दे टंगा लेंगे। एक बात जो देखी है कि जो जिस धंधे में रहता है उसके बातचीत करने में वह धंधे की झलक आ जाती हैं। दो हॉकी खेलने वाली लड़कियां आपस में मिली, हॉकी की भाषा में आपस में बातचीत कर रही हैं। बहुत दिनों के बाद सहेली मिली, आवाज़ देके बुलाया,
शीला इधर आना, क्या है तेरे को मालूम? क्या वो अपने साथ मंदा नहीं, मंदा? हाँ हाँ, क्या हुआ? मंदा को लड़का हो गया? हाय राम, लड़का कैसे हुआ? उसकी शादी तो 6 महीने पहले हुई थी ना। हाँ, शादी जरूर 6 महीने पहले हुई थी, लेकिन लड़का, हम बता लड़का कैसे, क्या हुआ? पेनाल्टी कॉर्नर से।
कपड़ा बेचने वाले कपड़े की भाषा में टॉन्टिंग कसते हैं। कपड़ा बेचने वाले, अगर कोई लड़की अकेली जा रही है तो कपड़ा बेचने वाला टॉन्टिंग कपड़े की भाषा में, अगर लड़की अकेली जा रही है तो लड़का,
अबे मामा उधर देख, क्या कट पीस जा रहा।
और लड़की पूरे परिवार के साथ है तो वही लड़का,
अबे छोटिया उधर देख, पूरा थान का थान जा रहा।
कपड़े की भाषा में बातचीत करते हैं। साथियों, प्लाट बेचने वाले, दो प्लाट बेचने वाले प्लाट की भाषा में किस प्रकार से टॉन्टिंग कसते हैं। दो प्लाट बेचने वाले पान ठेले पर खड़े हैं, पान खा रहे हैं। इत्तेफाक से उधर से एक लड़की साइकिल पर आती हुई दिखती है दूर से, तो एक प्लाट बेचने वाला दूसरे से कह रहा,
क्यों बे, अबे छोटिया उधर देख, 20x25 का प्लाट किसका है रे?
बाजू वाला बोला,
अबे मामा ये तो सुखदेव का प्लाट है रे।
अबे सुखदेव का प्लाट है क्या?
हाँ, इस प्लाट के लिए पूरे मोहल्ले वाले एनओसी के लिए लाइन लगा के रखे। हाँ।
प्लाट की भाषा। अब मैकेनिक, स्कूटर मैकेनिक यदि लड़की को टॉन्टिंग कसे, उनकी भाषा अलग रहती है, स्कूटर मैकेनिक वगैरह काम करने वालों की। देखिए, अगर कोई लड़की आ रही है जिसकी उम्र 18 साल की है, तो मैकेनिक की भाषा में लड़की को देखकर मैकेनिक इस प्रकार से,
मामा यार बिल्कुल नया मॉडल दिखता है। हाँ, नया मॉडल, ऐसा लगता शोरूम से अभी निकल कर आया। एवरेस्ट तो देख, क्या सनान।
यदि बुढ़िया आ रही है तो टॉन्टिंग करने का अंदाज ही बदल जाता, बुढ़िया को देखकर,
वेरी ओल्ड मॉडल, सीट एकदम फटी, प्लक में कचरा, हेडलाइट फूटे, सर्विसिंग की सख्त जरूरत।
आजकल लोगों को परिवार वालों पर कम, पड़ोसियों पर ज़्यादा भरोसा होने लग गया है। आज से कुछ दिनों पहले आया था परदेसी, परदेसी जाना नहीं, कहीं पर भी बजरा गाना, पान ठेले पर, कहीं पर भी, कहीं पर भी, हर तरफ यही गाना बजरा, परदेसी, परदेसी जाना नहीं। बारात आ रही है तो वहाँ पर भी शादी में गाना बजरा, परदेसी, परदेसी जाना नहीं। अरे जाएगा काय को भैया, बेचारा इतने पैसा खर्चा करके लड़की को लेने के लिए आया है, लेके ही जाएगा, वहाँ पर भी गाना बज रहा। उसके बाद अभी एक आया परदेसी,
तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे।
इतना चल रहा गाना है कि ऐसा कोई जगह नहीं होगी जहां पर ये गाना नहीं बज रहा। अब इसी कव्वाली के अंदाज में देखिए किस प्रकार से घरों में बातचीत हो रही है। एक पति पत्नी जो क्रिकेट के शौकीन थे, पत्नी पति से क्रिकेट की भाषा में इस कव्वाली को कह रही हैं। देखिए किस प्रकार से मजा आएगा।
ठहरे स्पिनर, तुम तो ठहरे स्पिनर, बल्ला क्या घुमाओगे।
तुम तो ठहरे स्पिनर, बल्ला क्या घुमाओगे। तुम तो ठहरे स्पिनर, बल्ला क्या घुमाओगे।
4 साल हो गए शादी को, अभी तक एक भी रन नहीं बना। अरे विकेट के बाहर खेलते हो, चौका क्या मारोगे।
तुम तो ठहरे स्पिनर, हे तुम तो ठहरे स्पिनर, बल्ला क्या घुमाओगे।
तुम तो ठहरे स्पिनर, बल्ला क्या घुमाओगे।
पहली गेंद में ही तुम बोल्ड हो जाओगे।
तुम तो ठहरे स्पिनर, बल्ला क्या घुमाओगे। तुम तो ठहरे स्पिनर, बल्ला क्या घुमाओगे।
कल के नेताओं के बारे में यदि जनता इस कव्वाली के अंदाज में कहेंगी तो उसका अंदाज कुछ इस प्रकार से होगा।
खाकर माल जनता का हो गए हैं नेता इतने मोटे कि खुद तो चल सकते नहीं, देश क्या चलाएंगे।
तुम तो ठहरे नेताजी, तुम तो ठहरे नेताजी, वादा क्या निभाओगे। ऊट लेके जनता का दिल्ली भाग जाओगे।
तुम तो ठहरे नेताजी, वादा क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे नेताजी, वादा क्या निभाओगे।
आज का जमाना टीवी का जमाना है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर कि टीवी उपलब्ध न हो। घर घर में टीवी घुस गया है। बच्चों को पहला पाठ कौन सा रहता है नहीं मालूम, लेकिन टीवी पे कौन सा प्रोग्राम कौन से दिन आता है बराबर पता रहता है। साथियों, जिस प्रकार से टीवी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से मैंने टीवी और बीबी के बारे में सोचा है कि कुछ दोनों में समानताएं होती हैं और दोनों में कुछ असमानताएं होती हैं। जिस प्रकार से हम टीवी खरीदने जाते हैं नया, तो दूर से नज़दीक से चालू करके बंद करके बराबर देखते हैं कि टीवी का पार्ट्स बराबर है कि नहीं। उसी प्रकार से शादी करने जब जाते हैं तो होने वाली बीवी को भी नज़दीक से दूर से हिला डुला के पार्ट्स हर जगह बराबर लगे है या नहीं बराबर देख के लेते हैं। ये तो हुई पहली समानता। दूसरी समानता ये होती है कि जिस प्रकार से टीवी कलर्ड रहता है, रंगीन होता है, उसी प्रकार से बीवी भी शादी के शुरू के 2 साल बड़ी कलर्ड दिखती है, उसके बाद धीरे धीरे कलर कम हो जाता है और वही श्याम धवल दिखने लगती हैं। एक समय ऐसा आता है कि पिक्चर ट्यूब ही उड़ जाता पूरा। ये तो हुई समानताएं। उसी प्रकार से दोनों में कुछ असमानताएं भी होती हैं। टीवी देखने के लिए एंटीना होता है, बीवी के मामले में ऐसा नहीं है। आज तक मैंने एंटीना देखा ही नहीं, बिना एंटीना के ही सब कुछ दिख जाता है। टीवी चालू करने के लिए बंद करने के लिए बटन होता है, परंतु बीवी के मामले में ऐसा नहीं, अपने आप चालू अपने आप बंद बिना बटन के ही। एक और असमानता होती है टीवी में, किसी प्रकार की खराबी आए टीवी मैकेनिक के पास ले जाइए, पार्ट्स बदल देगा, टीवी चालू। परंतु बीवी के मामले में ऐसा नहीं, बीवी में खराबी आई तो पूरा का पूरा ही बदलना पड़ता, आखिरी समय में पूरी बीवी बदलना पड़ता। एक सरदार जी का कान एक तरफ पर जला हुआ था, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछा,
सरदार जी आपका एक कान, ओ जी क्या पूछ रहा है सरदार जी, आपका एक कान कैसे क्या जला? उत्तरा मतलब एक ही दूसरा कान भी जलना चाहिए था? नहीं, मैं ऐसी अपनी जानकारी के लिए पूछा तुम्हारा एक कान। ओ तो सुन, जानकारी होना तुझे तो सुन। दरअसल क्या हुआ कि मैं प्रेस कर रहा था कपड़े की, उसी समय फोन की घंटी बजी, मैंने उठाया प्रेस और हेलो।
हमारे घर कुछ मेहमान आए, रात को सुलाने के समय बिस्तरों की कमी पड़ गई, खटिया की कमी पड़ गई। हम अपने पड़ोसी के घर पहुँचे, पड़ोसी से कहा,
भाई साहब हमारे घर मेहमान आए, इसलिए अगर एकाधिक खटिया मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी हो जाती।
पड़ोसी ने कहा,
देखिए भाई साहब देने को तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे घर दरअसल 2 ही खटिया है, एक पे मैं और मेरे पिताजी सोते और दूसरी खटिया पे मेरी माँ और मेरी घरवाली सोती।
नहीं देना तो मत दो भैया, लेकिन जरा सोने का ढंग तो बदल लो। कुछ दिनों पहले हमारे देश में भूकंप आया था। भूकंप का सबसे ज़्यादा असर जबलपुर में हुआ, कई लोग मरे, कई लोगों के मकान टूट कर गिर गए, कई लोग टूटे हुए मकान के नीचे दब कर मर गए। पर साथियों, जब भूकंप आया तड़के 4:30 बजे, उस समय लोगों के घरों में देखिए क्या प्रतिक्रिया हो रही थी, जब जमीन हिल रही थी उस समय लोग अपने अपने घरों में क्या बातचीत कर रहे थे। पत्नी ने पति से कहा,
सुनो
क्या है?
अरे बाबा भूकंप आया, भूकंप।
भूकंप कौन सी गाड़ी से आया? अभी तो कोई टाइम ही नहीं भूकंप आने का।
अरे बाबा भूकंप आया, भूकंप, देखो पलंग हिल रहा है।
पलंग हिल रहा? कौन घुसा पलंग के नीचे? निकल बाहर, 20 साल हो गए आज तक मैं पलंग नहीं हिला सका, कौन घुसा?
नहीं बाबा घुसा किसे, कोई नहीं पलंग के नीचे, लेकिन भूकंप आया, देखो दीवार हिल रही है।
भूकंप?
जब से लगा के रखी भूकंप भूकंप, कितनी देर हो गई भूकंप भूकंप लगाकर, वही बात एक ही बात, क्या डरना भूकंप से?
अरे जिसने तेरे जैसे भूकंप को सहन कर लिया वो ये छोटे मोटे भूकंप से क्या डरेगा?
भूकंप भूकंप लगा के रखी,
दो छोटे बच्चे भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एक ने कहा,
क्या रे छोटिया, भूकंप आया तो कई लोगों की दीवार तड़क गई, ऐसा क्यों हुआ?
दूसरा लड़का बोला,
तेरे को नहीं मालूम, भूकंप तड़के आया था ना, इसलिए जो जो तड़क सकता था उसने वो तड़का दिया।
भूकंप आकर चला गया 4:30 बजे के बाद। 5 मिनट के बाद लोगों में उत्सुकता निर्माण हुई कि किसका क्या नुकसान हुआ ये जानना चाहिए। एक शर्मा जी के घर सिंधी भाई पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई,
अरे शर्मा, अरे दरवाजा खोल यार, अरे यार बर्बाद हो गया यार, मैं बर्बाद हो गया यार, दरवाजा खोल यार।
क्या है?
अरे शर्मा, मैं पका बोलता हूँ यार, पका बोलता हूँ यार, पूरा सत्यानाश हो गया यार मेरा, पका बोलता हूँ यार।
अरे हुआ क्या?
अरे यार शर्मा जी, अब यार भेड़ा तुम से झूठ क्या बोलो यार, पका बोलता हूँ यार, पूरा दुकान का नुकसान हुआ होगा।
तुम तो यहाँ पर घर में बैठे यार, कैसे बता सकते दुकान का नुकसान हुआ होगा?
अरे यार पर पका बोलता हूँ यार, मैं इधर बैठा हूँ यार, लेकिन पका बोलता हूँ जिधर भूकंप हिला है ना, जमीन हिली है ना, उधर मेरा दुकान भी था। पका बोलता हूँ यार, पका बोलता हूँ, कम से कम यार कल ही यार दुकान में सामान बड़ा यार, तेल का पीपा लाया यार, उसके ऊपर अगरबत्ती का डब्बा रखा यार, उसके ऊपर पापड़ रखा यार, पका बोलता यार, पका बोलता यार, भगवान सही में यार पूरा पका बोलता यार, नुकसान बहुत हुआ यार।
कितना नुकसान होगा?
अरे यार पका बोलता हूँ यार, 5,000 का तो नुकसान हुआ होगा यार, पका बोलता यार, पका बोलता हूँ,
हुआ होगा उसमें क्या?
नहीं यार फिर भी भगवान से ऐसा बोलता हूँ यार, रिक्वेस्ट करता हूँ यार, प्रार्थना करता हूँ यार झूलेलाल भगवान से कि भूकंप बार बार आना चाहिए।
तू यार सेठ, यहाँ तो लोग मर गए, दब गए होंगे भूकंप में, और तुम लगा के रखे बार बार आना चाहिए।
नहीं यार ऐसा भगवान से प्रार्थना इसलिए करता हूँ यार कि देखो यार, कल सरकार बोलेंगी कि जो मरा उसको 1,00,000, जो आधा जिसका मकान आधा गिरा उसको 50,000, जो आधा मरा उसको 25,000। अब देख यार मेरी दुकान गिरी है, हिली है, जो भी है, पर कम से कम 25,000 रुपये तो मिलेगा ना। अब नुकसान अपना 5,000 का हुआ, 20,000 फायदा होगा ना, इसलिए बोलता हूँ भगवान को कि भूकंप बार बार आना चाहिए, बार बार आना चाहिए।
अरे यार सेठ, कहाँ लगा कर रखे, तुम अपना फायदा देख रहे, चलो यहाँ से। सिंधी भाई गए कि नहीं, उसके बाद थोड़ी देर बाद एक मद्रासी मुत्तु स्वामी भाई शर्मा जी के घर पहुंचे। उन्होंने अपनी भाषा में कहा,
अरे शर्मा, अरे खोल दिए दरवाजे, खोल।
खोल था जो कौन है?
अरे हम मुत्तु स्वामी जी, दरवाजा खोल।
क्या हुआ?
अरे शर्मा जी, जोट ने बोलना, हम पूछता तुम बताना, जोट ने बोलना,
पूछो।
अरे शर्मा, हम पूछता हमारा उठा तुम्हारा उठा क्या?
अरे कई लोग भूकंप के कारण संसार से उड़ गए।
अरे नहीं जी, तुम गलत समझता शर्मा, हम पूछता हमारा पलंग उठा तुम्हारा उठा क्या?
हाँ मुत्तु स्वामी, हमारा पलंग उठा था।
गुड, खुशी, भगवान की कसम बहुत खुशी है, अपन दोनों का उठा, हमारा भी उठा तुम्हारा भी उठा जी पलंग।
अच्छा
शर्मा जी, अब जोट ने बोला हमारा हिला तुम्हारा हिला क्या?
अरे मुत्तु स्वामी, कई लोगों के मकान हिल गए।
नहीं जी शर्मा, हम पूछता हमारा पलंग हिला तुम्हारा हिला क्या?
हाँ हमारा पलंग हिला।
गुड, खुशी, हमारा भी पलंग हिला तुम्हारा भी पलंग हिला, दोनों का पलंग हिला जी। अच्छा शर्मा, जोट ने बोलना एक बात और पूछता हमारा दबा तुम्हारा दबा क्या?
अरे मुत्तु स्वामी, कई लोगों के बच्चे दब गए, कई लोग दब के मर गए।
नहीं जी, हम पूछता हमारा हाथ दबा तुम्हारा दबा क्या?
हाँ मुत्तु स्वामी, हमारा भी दबा क्या?
खुशी, तुम्हारा भी दबा हमारा भी दबा, दोनों का दबा जी। अच्छा आखिरी बात पूछता, झूठ नहीं बोलना शर्मा, आइए झूठ नहीं बोलना जी,
पूछो।
अरे शर्मा जी, हमारा गिरा तुम्हारा गिरा क्या?
अरे क्या वही बात पूछ रहे मुत्तु स्वामी?
नहीं जी, हमारा मकान गिरा तुम्हारा मकान गिरा क्या?
हाँ गिरा तो था,
दोनों का गिरा जी, खुश है, अब हम पूरे कॉलोनी को जाके बताएंगे जे जो शर्मा का हुआ वो हमारा भी हुआ जे, दोनों के साथ हुआ जे, शर्मा जी का भी पलंग उठा हमारा भी उठा, हमारा हाथ दबा शर्मा जी का भी दबा जे, दोनों का खुश है, पूरे कॉलोनी को जाके बताऊंगा शर्मा जी और हमारा दोनों का संभा कंबाइंड दोनों का ये लजे उठा जे खुश।
भूकंप के बारे में एक बच्चे ने पिताजी से प्रश्न पूछा।
पिताजी पिताजी,
बोल बेटे।
पिताजी पिताजी, भूकंप किसे कहते हैं?
बेटे, जब धरती हिलती है और जब वस्तुएं गिरने लगती है, समझ जाओ भूकंप आ गया।
उदाहरण देकर बताओ ना पिताजी।
बेटे, जैसे तुम्हारी माँ।
अच्छा, मम्मी भूकंप है?
नहीं बेटे, ये छोटा भूकंप है। जिस दिन भूकंप आया उसके दूसरे दिन सवेरे टीवी वाले, पत्रकार लोग वगैरह वगैरह सब लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए लोगों के पास पहुँचे। एक सज्जन ने एक महिला से पूछा।
देखिए बहन जी, हम जो है ये दूरदर्शन से आए हैं, क्या आप हमको बता सकती हैं कि मतलब भूकंप आया उस समय आपको कैसे क्या पता चला कि ये भूकंप है, भूकंप का झटका है? हाँ हाँ, ये हाँ बताइए बताइए।
सबसे पहले तो हाँ, आपका नाम 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 बताइए।
मेरा नाम है ना पार्वती भाई।
अच्छा अच्छा, पार्वती भाई आप बताइए, मतलब आपको भूकंप आया कैसे पता चला?
मैंने शाम को 4 बजे है ना, मैंने घर का पूरा काम किया। हाँ, आप किसी से पूछ लीजिए, मैं पूरा घर का काम किया। अब काम करने के बाद मैंने पूरा खाना बनाया, आप किसी से भी पूछ लीजिए मेरे बारे में। खाना वाना बनाने के बाद है ना, मैंने पूरा बिस्तर बिछाया, बिस्तर बिछाने के बाद है ना मैंने बच्चों को खाना खिलाया, आप किसी से पूछ लीजिए। मैं कहने बच्चों को हमेशा खाना खिलाती हूँ। हाँ, मैंने ना बच्चों को खाना खिलाने के बाद बच्चों को सुला दिया, सुलाने के बाद है ना मैंने टीवी चालू किया, टीवी चालू करने के बाद मैंने मेकअप किया। हाँ, मेकअप करने के बाद ना मैं अपने रात को अपने पति का इंतजार कर रही थी, इंतजार करते करते मुझे नींद आ गई। हाँ, अचानक है ना मेरे मुंह पे घमेला भर के मिट्टी गिरी। हाँ, बाद में मुझे पता चला कि भूकंप आया। भूकंप?
हाँ माँ जी, आप बताइए, मतलब आप भूकंप आया उस समय आप क्या कर रही थी? हम आप बताइए, आप कहाँ से हैं?
महंगा माँ की महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ।
अच्छा अच्छा, ये वाजी भाई ठीक है, महाराष्ट्र की है, लेकिन आप बताइए थे मतलब भूकंप आया तो आप कैसे क्या?
आता मैं कहा सांगू बापा, मैंने आपला जीवना मजे लगी भूकंप आने। माया नवर जो पर एक भूकंप सारखा होता, चाचा वजन 100 किलो। आता हे एवढा मोठा भूकंप पाहिला मी ना आपला, तो आता वर्त गेला, आता मी का सांगू, आता मला रात्रभर झोप येतच नाही। मी का नाही, दिनभर रातभर टकटकी लगा के देखती रहती। आता तर मला माई एकच इच्छा वय, भूकंपचे झटके केव्हा येते कधी येते आता तुम्हाला तर सर्व माहीतच आहे। माई एकच इच्छा, आखरी इच्छा वय, राजा हिंदुस्तानी फिल्म पाती।
हमसे तो पूछ, हम भी तो बताने को बैठे है ना, चल ले।
भाई साहब।
ए भाई साहब, नहीं बोलना आपने क्या?
बहन जी
भी नहीं बोलना, बता रहे।
भाई साहब भी नहीं बोलना, बहन जी भी नहीं बोलना, फिर बोलना क्या?
भाई दोनों के बीच का बोल, चल बोल। हाँ
हाँ, बताइए मतलब क्या हुआ सवेरे?
अरे बता रे, है चंपा, है मोगरा, है खुला पैजामा, है ढीला पैजामा, चली जरा।
अरे गा के बोल भाभी, गा के बोल।
अरे गा के बोलती, हाँ गा के बोलती, चल ले
सुन।
सुबह के 4 बजे है खटिया हिले, मैं समझी चंपा गिरे। अरे उठ के बैठे मैं भोर से गिरे, आए बाहर निकल के चिल्लाई मैं, आया खिल्ला रे, बनकर तेरा भोमा।
एक शराबी जिसका पूरा परिवार भूकंप से पीड़ित है, उसके बच्चे मर गए, पत्नी मर गई, माँ भी दबकर मर गई। जब उसको पता चला कि भूकंप में मेरे परिवार के सभी लोग दबकर मर गए हैं, तो शराबी अपने परिवार के सदस्यों के पास पहुंचा है और बच्चों को पकड़कर माँ को पकड़कर किस प्रकार से विलाप करता है, देखिए शराबी।
ऐ भूकंप, ऐ भूकंप, लातूर और जबलपुर में क्या रखा है? अरे हिलाना ही है तो संसद भवन को हिला। बहुत अच्छा किया भैया भूकंप, तूने मेरी माँ को मार डाला। दो दिन से बिचारी भूखी भी थी। बहुत अच्छा किया, उसे मैं नहीं मार सकता था, तूने मार डाला। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे, इनको भी मेरे से छीन लिया। देखना इन मरे हुए बच्चों के नाम से ये नेता पैसे खाएंगे, अपनी बिल्डिंग बनाएंगे। मैं एक बार फिर बोलता हूँ भूकंप, एक बार और हमारे जैसे बुरे लोगों को लेके चला जा भूकंप।
आजकल जमाने भर की पार्टियां खुल जाती हैं, इलेक्शन नज़दीक आता है तो नई नई पार्टियां बन जाती हैं, इलेक्शन ख़त्म हुआ पार्टी कहां गई मालूम नहीं। आजकल देखिए कब कौन सी पार्टी खुलकर आ जाए, आलू पार्टी, कालू पार्टी, चालू पार्टी, इलेक्शन ख़त्म हुआ दरवाजे आपस के बंद। ऐसे ही इलेक्शन के समय बीमार लोगों ने, मरीज लोगों ने सोचा कि सबकी तरह अपनी भी पार्टी होना चाहिए, मरीज पार्टी। उनके उम्मीदवार भी सब बीमार, उनके नेता भी सब बीमार और उनके सुनने वाले श्रोता भी सब बीमार। ऐसी एक चुनाव सभा का दृश्य देखिए, नारे लग रहे, चुनाव चिन्ह उनका कैप्सूल। अब देखिए नारे लग रहे,
वार कैप्सूल
आ गया, कैप्सूल
वार कैप्सूल
आ गया, कैप्सूल
मरीज पार्टी
जिंदाबाद,
मरीज पार्टी
जिंदाबाद,
जो हमसे टकराएगा
वो बीमार हो जाएगा।
देखिए भाइयों और मेरे सभी बीमार साथियों, सब बैठ जाएं, बैठ जाएं, जो बैठ सकते हैं बैठ जाएं, जो लेट सकते हैं वो लेट जाएं, और जैसी जैसी व्यवस्था है वो अपनी सुविधा का पूर्ण तरह से लाभ उठाएं। मेरे साथियों, आज हमारे बीच में, हमारे मंच पर दाहिनी तरफ बैठे हैं हमारी राष्ट्रीय एकात्मकता के प्रतीक, जो दाएं से देखो तो महाराष्ट्र के, बाएं से देखो तो बिहार के, आगे से देखो तो यूपी के, और पीछे से देखो तो कहीं के नहीं दिखते। ये है हमारे राष्ट्रीय एकात्मकता के प्रतीक मिस्टर लखवा जी। मैं चाहूँगा इनका जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत किया जाए। मंच पर बैठी है बहन काली खांसी, उनके बाजू में है मिस्टर डेंगू बुखार, और गुजरात में तहलका मचाने वाले हमारे राष्ट्रीय नेता मिस्टर प्लेग। अब मैं सबसे पहले हमारे मिस्टर दमाजी से निवेदन करूंगा कि वे आकर अपने बीमार भाइयों की सभा में कुछ कहे।
देखिए मेरे बीमार भाइयों,
हाँ हाँ बैठ जाइए बैठ जाइए साथियों, हमारे इस वक्ता का दम भर गया है, इसीलिए ये थोड़ी हवा भरने के लिए मंच पर बैठने जा रहे हैं। अब आपके सामने हम मिस्टर लकवा से कहेंगे कि वे अपने विचार प्रकट करें।
मेरे बीमार भाई बहनों, आप सबको मालूम है, आप सबका उत्साह देखकर मेरी 2-3 महीने की जिंदगी और बढ़ गई है।
ओए, उम्मीदवार को सामने लाओ।
देखिए शांति भंग ना करे, उम्मीदवार किस लाइन खत्म होते ही, ग्लूकोज खत्म होते ही वो आप सबके सामने आ जाएंगे।
इतने में एक कार्यकर्ता ने आकर कहा,
ओ भियो भियो, अपनी उम्मीदवार उखड़ गए।
वो मीटिंग शोक सभा में परिवर्तित हो गई और उनके नेता ने कहा,
बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है साथियों कि हमें हमारे लाडले उम्मीदवार वोट डालने के पहले ही यमराज के पास चले गए। हम फिर आगे बढ़ेंगे, जय हिंद।
एक शराबी रात को 12 बजे नशे में धुत जा रहा है, गुनगुना रहा है गाना,
सो गया ये जहां, सो गया आसमां।
इतने में एक कुत्ता उसे देख के भौंका,
ए कुत्ते, बताया तेरे को मेरे को काटना नहीं, भौंकना नहीं, हिम्मत दे तो कट 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 कट, अबे तेरे पे भी नशा चढ़ जाएगा, तू क्या काटेगा।
इतने में एक पत्थर मारने के लिए शराबी झुकता है,
निकल। कमाल है मोहल्ले वाले, अरे पत्थर को तो बांध के रखे और कुत्ते को छोड़ के रखे।
कल्पना करिए कि कभी कभी कुत्तों का मुशायरा भर जाए, कवि सम्मेलन अलग अलग प्रकार के होते हैं, कल्पना करिए कि सुनने वाले जितनी भी महफिल में बैठे हैं सब कुत्ते बैठे हैं, जिस प्रकार से कोई शेर सुनने के बाद हम वाह वाह कहते हैं, कल्पना करिए कि शेर सुनने के बाद अगर कुत्ते रहे महफिल में तो वो दांत किस प्रकार से देंगे। शेर अर्ज किया है,
तो कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते।
अब इस पर कुत्ते लोग दांत दे रहे। शेर,
कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते।
कुत्ते,
वाह 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 वाह।
शेर ज्यादा ही पसंद आ जाए तो, शेर,
कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते, ये और बात है कि लोग उन पर शक नहीं करते।
वाह 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 वाह।
एक कुत्ता बेचने वाला 4-5 कुत्तों के गले में पट्टी बांधकर रस्सी बांधकर अपने हाथ में लेके घूम रहा है, कुत्ता बेचने वाला। अब देखिए दुकानदार की विशेषता रहती है कि माल कैसा भी रहे अच्छा बताकर उस माल को बेचता है कुत्ता बेचने वाला गले में घूम रहा।
अइले कुत्ते ले, कुत्ते ले, कुत्ते ले, अइले भोकने वाला ले, छोटी पूंछ वाला ले, खुजली वाला ले, कुत्ता ले।
एक दादाजी ने आवाज लगाई,
ओ कुत्ते वाले।
दादाजी मुझे बुलाए क्या?
इधरो इधरो।
हाँ बोले दादाजी।
ये कुत्ता बेचने का है क्या?
हाँ दादाजी कुत्ता बेचने का है।
अच्छा ये वाला कितने का है?
दादाजी ये 500 रुपए का है।
अच्छा कुत्ता 500 का, उसके बाजू वाला कितने का है?
दादाजी वो 700 रुपए का।
अच्छा
ये 500 का और वो 700 का अलग दोनों में विशेषता क्या है, अंतर क्या है?
दादाजी ये जो 500 वाला है और ये जो 700 वाला है, ये 700 वाला चोर को पकड़ता है।
अच्छा, और ये 500 वाला नहीं पकड़ता क्या?
ये भी पकड़ता है, लेकिन इसको उठाना पड़ता, उठ बताना पड़ता चोर आया।
अच्छा अच्छा अच्छा, वो तीसरा कुत्ता कितने का है?
दादाजी वो 1000 रुपए का है।
अच्छा, कुत्ता 1000 रुपए का?
हाँ दादाजी, उसकी कलर की गारंटी है।
अच्छा अच्छा, कलर की गारंटी, कुत्तों के कलर भी जाते, वाह कमाल की बात है। ऐसा करो कुत्ता दे दो।
दादाजी ने उस कुत्ते को लेकर घर पर गए। कुत्ता भी ऐसा, बड़े बड़े बाल, आगे का भाग कौन सा पीछे का भाग कौन सा समझ में नहीं आ रहा। कुत्ते को लेकर दादाजी घर पे गए, बहू से कहा, बहू बहू देखो मैं तुम्हारे कुत्ता लाया। बहू अंदर से आई, बहू ने कहा,
कहाँ है दादाजी कुत्ता?
ये देखो बेटा ये कुत्ता।
कितना प्यारा कुत्ता है।
अरे नहीं बहू, कुत्ते को पलटा लो, वो गलत तरफ है। हाँ, उसका मुंह अलग है, पलटा लो। बहू ने कुत्ते को पलटाया, 3 दिन कुत्ते को निलाया, कुत्ते का कलर चला गया। कलर जाने के बाद 4थे दिन दादाजी कुत्ते को लेकर कुत्ते वाले के पास पहुंचे। कुत्ते वाले से कहा,
ए कुत्ते वाले,
बोलिए।
3 दिन पहले मैंने तेरे पास से कुत्ता लिया था।
फिर बकरी बन गया क्या?
नहीं बकरी नहीं बना, उसका कलर निकल गया।
तुमने उसको निलाए होंगे?
निलाया तो था।
अरे निलाना नहीं था, उसको ड्राई क्लीन में देना था।
ड्राई क्लीन में देना था? अरे ड्राई क्लीन में देते तो मर नहीं जाता।
मरता, लेकिन कलर नहीं जाता।
एक सज्जन को, एक आदमी को रात को कुत्ते ने काट लिया। डॉक्टर साहब के पास पहुंचा, दरवाजा खटखटाया।
डॉक्टर साहब दरवाजा खोलो। डॉक्टर साहब,
खोल रहा हूँ भैया, खोल रहा हूँ।
खोलो डॉक्टर साहब।
अरे खोल रहा हूँ बोला। बोलो क्या हुआ?
डॉक्टर साहब मुझे कुत्ते ने काट लिया डॉक्टर साहब।
अरे वो तो ठीक है, कुत्ते ने काट लिया, लेकिन तुमको टाइम बे टाइम कौन सा दवाखाना खुला रहता है, कौन से टाइम बना, तुमको मालूम नहीं क्या?
डॉक्टर साहब मुझे तो मालूम है आपके दवाखाने का टाइम, लेकिन कुत्ते को थोड़ी मालूम।
एक बार एक छोटे से बच्चे ने अपने दादाजी से प्रश्न पूछा।
दादाजी
कहो बेटे।
दादाजी एक बात बताओ।
पूछो बेटे।
दादाजी पहले अपने मोहल्ले में चोरी होती थी।
हाँ हाँ बेटे होती थी।
तो पहले पुलिस वाले चोर को पकड़ने के लिए अपने साथ कुत्ता लाते थे। कुत्ता आता था दादाजी और जगह सूंघता था और चोर को पकड़ के लाता था। लेकिन आजकल दादाजी पुलिस वाले कुत्ते को लेकर क्यों नहीं आते?
बेटा दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों से कुत्ता जो था ना, वह चोरी की जगह सूंघने के बाद पुलिस थाने पहुंचने लगा।
एक छोटा बच्चा पुलिस थाने पहुंचा और इंस्पेक्टर साहब से शिकायत करने लगा।
इंस्पेक्टर साहब।
क्या हुआ?
इंस्पेक्टर साहब बाजू वाला मेरे बाप को मार रहा है। बाजू वाला।
क्यों? बाजू वाला क्यों मार रहा तुम्हारे बाप को?
इंस्पेक्टर साहब झगड़ा हो रहा है।
झगड़ा हो रहा? कब से झगड़ा हो रहा?
इंस्पेक्टर साहब 1 घंटे से झगड़ा हो रहा।
1 घंटे से झगड़ा हो रहा? और तुम अभी आए बताने?
इंस्पेक्टर साहब दरअसल पहले है ना, मेरे पिताजी उसको मार रहे थे।
एक पुलिस वाले सज्जन अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद घर पर पहुंचे, पतलून उतारी टंगाई, हाथ मुंह धोने के लिए जैसी अंदर गए, पत्नी ने मौका देखा, जेब में हाथ डाला, 100 का नोट निकाला और जैसी 100 का नोट निकाला तुरंत पुलिस वाले ने पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा,
पुलिस वाले के घर में चोरी, करूं अंदर?
पत्नी ने कहा,
जाने दो ना,
क्यों?
50 का नोट रखो, बात यहीं पर खत्म करो।
एक चोर को पकड़कर पुलिस वाला ले जा रहा था और कहने लगा,
बहुत दिनों बाद पकड़ में आया है, बहुत घुमाया मेरे को।
नहीं इंस्पेक्टर साहब,
चुप।
इंस्पेक्टर के बच्चे पिछले बार बहुत चकमा देकर भाग गया था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब एक बार कहूं।
बोल। चल तेरे को आज छोड़ूंगा नहीं, तेरे को अंदर करूंगा।
इंस्पेक्टर साहब अंदर तो कर देना, लेकिन मेरी एक इच्छा है।
इच्छा है? कौन सी?
वो सामने जो पान ठेला है ना, वहां से मैं बीड़ी का बंडल लेकर आ जाऊं। जाकर गया और आया।
बीड़ी का बंडल? पिछले बार भी तू ऐसा ही कहकर भग के गया था।
पिछले बार बोलता था, इंस्पेक्टर साहब खड़े रहो, मैं बीड़ी का बंडल लेकर आता हूँ। मैंने कहा जा लेकर आ जा, तो वहीं से तू भग गया। 2 महीने तेरे पीछे घूमा, जब पकड़ में आया, आज तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ज्यादा होशियारी नहीं, ज्यादा चालाकी नहीं, तू यहां खड़े रहे, मैं बंडल लेकर आता।
हमारे मोहल्ले में कई घर ऐसे हैं जिन लोगों के अंदर फिल्मी कलाकारों की आत्मा घुस जाती हैं। भले ही आवाज़ निकले न निकले, लेकिन बराबर उसी अंदाज में बातचीत करते हैं, उसी अंदाज में चलते हैं। एक बस का ड्राइवर है, बिल्कुल जगदीप साहब के अंदाज में चलता है, जगदीप साहब के अंदाज में ही बस में कंडक्टरी करता है। अब देखिए अपना अपना अंदाज।
अरे उस्ताद खंबा उखाड़ के, अरे भैया दरवाजा खोल के, अरे भैया ड्राइवर, अरे गाड़ी आले दो पीछे, आले दो आले दो आले, अरे बस अरे रुक जा, अरे बहन जी तुम चलो, माता जी तुम चलो, माता जी के ऊपर कोई मत चलो यार, अरे हे रुक जा भैया रुक जा।
सवारी भी वैसी फिल्मी कलाकारों की अंदाज बात करने वाली, एक कृष्ण मुखर्जी के अंदाज में,
या बैठू क्या?
अरे उस्ताद देसी विदेशी तू हट जा परदेसी, भैया बाजू हट बाजू हट बाजू हट।
इतने में अजीत साहब के अंदाज में बात करने वाले एक सज्जन कंडक्टर साहब के पास पहुंचे। कंडक्टर साहब से कहा,
देखो जगदीप तुम हमको बैठने दो।
अरे उस्ताद बोला ना, पूरी बस पैक हो गई है, जगह बिल्कुल नहीं है।
देखो बरखुदार तुम हमको नहीं जानते।
अरे जानना क्या है भैया, जानना क्या है बोला ना एक बार, अरे बस में जगह नहीं है।
देखो बरखुदार तुम हमको नहीं जानते, हम यहाँ के बार्बर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, हमारे एक बटन दबाते ही शहर के सारे नाई यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, और फिर दूसरा बटन दबाते ही सबसे पहले तुम्हारे सिर के बाल, उसके बाद दाढ़ी के बाल, उसके बाद छाती के बाल।
अरे उस्ताद आगे नहीं उतरना, आगे खतरा है।
ले पंख ले पंख ले हाथ पंखा, ले पंख ले पंख ले पंख ले हाथ पंखा। ए पंखे वाले इधर।
बोलिए बहन जी, पंखा कितने का है? 3 रुपए का। अच्छा कोई गारंटी वगैरह भी है क्या? हाँ जी 1 साल की गारंटी है। अच्छा 1 साल की गारंटी तो एक पंखा दे दो।
पंखा लिया, पंखे को हिलाया, 3 दिन में ही डंडा लग पंखा लग। पंखे वाले को बुलाया, 6 दिन के बाद पूछा,
क्यों भैया तुमने से कहा था कि पंखा साल भर की गारंटी है, ये तो 3 दिन में ही पंखा लग डंडा लग।
बहन जी तुमने किया क्या था?
अरे करेंगे क्या, पंखे को हिलाई मैंने हवा के लिए।
अरे उसको हिलाना नहीं था, पंखा सामने रखना था और गर्दन हिलाना था।